ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சதப்ரஹ்மணே நமஹ. ஓம் ஶாந்திஹி ஶாந்திஹி ஶாந்திஹி. தத்துவ ஜிக்யாசு பாய்யு வேணு மாதாவ், ஹம்லோக் 17வே அத்தியாய கே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே த்வாரா யஜ்ய தான் தப் ஆஹார வகேரே கே பாரே மே ஜோ பேத பதாயே ஹை உன்மே சே तप के भेद या स्वरूप का विचार हम लोग कर रहे हैं। क्यों भगवान ये बता रहे हैं? अर्जुन को ऐसा कौन सा प्रश्न उठा? तो देखिए, शुरू में अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान कार्य और अकार्य को करने के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक है। अब सब लोग तो शास्त्रज्ञ है नहीं, किंतु श्रद्धा से जरूर अन्वित होते हैं, श्रद्धावान जरूर होते हैं। पूर्वाचार्यों से या परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है उसके अनुसार व्यक्ति यज्ञ दान तप वगैरह करते हैं, तो ये जो उनकी निष्ठा है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह में ये जो निष्ठा है, वो निष्ठा का कौन सा स्वरूप है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? ऐसा अर्जुन ने पूछा भगवान को कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं तो उनकी जो निष्ठा यानी कि स्थिति, वो स्थिति कौन सी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? अर्जुन, ये प्रकार जानने का कारण यह है कि सात्विक स्थिति हो तो वो ज्ञान का अधिकारी है, राजसिक या तामसिक हो तो वो अधिकारी नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ये चाहता है कि भगवान आप ये जो सत्कार्य है, आहार यज्ञ दान तप वगैरह, उनके आप भेद बताएंगे तो मैं उन भेदों में से सात्विक भेद को जानूंगा और तदनुसार अनुष्ठान करूंगा तो मैं भी ज्ञान का अधिकारी बन जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हे अर्जुन, ये जो पुरुष है वो श्रद्धामय है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। और सबकी जो श्रद्धा है वो सत्व, रज और तम गुण के अनुसार हुआ करती है। इसलिए संसार में देख सकते श्रद्धा वाले तो सब होते हैं, किंतु वो श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ये जानना बहुत बड़ी स्थिति है। आजकल हम संसार में देखते हैं कि जो उपासना स्वरूप, उपासना का स्वरूप है, देवता का जो स्वरूप है, उपासना की विधि का जो स्वरूप है, वो इतना बिगड़ता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है कि वो उल्लास की जगह उन्होंने त्रासोल्लास का स्वरूप धारण कर लिया है, है क्या नहीं? तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग जो कर रहे हैं क्या तामसिक कोटि का है, राजसिक कोटि का है या सात्विक कोटि का है। जब तक ये भेदों को नहीं समझेंगे हम लोग, ये नहीं चाहते कि हम तामसिक कोटि का करें, किंतु जाने अनजाने तामसिक कोटि का वो हो जाता है। स्पष्ट रूप से भेद हमारे सामने आ जाए तो हम जरूर सात्विक कोटि का ही ये आहार यज्ञ दान तप करने के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। तो मैं यही कहने जा रहा हूं इस गीता के संदर्भ में कि हम सब लोगों को ये आहार यज्ञ दान तप वगैरह जो है, वो गीता में भगवान ने उनके असात्विक आदि तीन भेद बताए हैं। अब वो देख करके हम यदि करें तो कर तो हम रहे ही है, ये तो नहीं कि हम बिना करे रह सके। कोई व्यक्ति किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर मात्र भी किए बिना नहीं रह सकता। तो ये जो क्रिया का जो प्रवाह है वो पुण्य धर्म में ही बनाए। पहले तो क्रिया के प्रवाह को पहले धर्मानुरूप बनाए, धर्मानुरूप उसमें भी सात्विक कोटि का बनाए, किंतु ये कब बना सकते हैं? हमें गीता के संदर्भ में इनके स्वरूप को जानेंगे तब। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आहार यज्ञ दान और तप के त्रिभेद बता रहे हैं, सत्व रज और तम ये भेद बता रहे हैं। उन भेदों में से हम तप के भेद का विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तप के सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद बताना चाहते हैं, किंतु उससे पहले भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये तप जो है वो शरीर से, मन से और वाणी से तपा जाता है। शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, मन का तप क्या है, पहले भगवान ये शरीर आदि भेद से तप का जो त्रैविध्य रूप है वो बता देना चाहते हैं, फिर भगवान ये कहेंगे कि ये किस प्रकार से किया जाए तो ये सात्विक कहा जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा तो ये राजसिक कहा जाएगा, या किस प्रकार से किया जाए तो ये तामसिक कहा जाएगा। इसलिए पहले हम ये देख रहे हैं ये शरीर, वाचिक और मानसिक रूप से तप के तीन भेद, त्रिविध स्वरूप। शरीर से होने वाले तप के बारे में हम लोगों ने कल विचार किया, देवादि की पूजा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा, ये पांच जो देव है वो हमारे सनातन धर्म के मुख्य रूप से इसकी पूजा उपासना की जाती है, पंचदेव उपासना। तो ये सब देवताओं की पूजा, द्विज यानी कि जो ये वैदिक अध्येता वर्ग है, जो विद्वान है उनकी पूजा, गुरु की पूजा, गुरु में जैसे कल आपको बताया था माता और पिता को इसमें सम्मिलित कर लेना है, माता पिता और गुरु जी की पूजा, और प्राज्ञ की पूजा जो ज्ञानी पंडित है उनकी पूजा, शौच, बाह्य और आभ्यंतर की पवित्रता, और आर्जवम यानी कि अकौटिल्यम, जीवन में हर कार्यों में सरलता, और ब्रह्मचर्य, निषिद्ध मैथुन और अहिंसा, और शास्त्र प्राणी पीड़न, जो शास्त्र में प्राणियों की पीड़न के लिए जो निषेध किया गया है वो निषेध के अनुसार चलना, यानी कोई जीव की हिंसा न करना, ये सब कार्य जो है यदि कोई करता है तो समझ लो कि वो शरीर से तप कर रहा है, ये जो है शरीर संबंधी तप है। ये 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वाणी का तप क्या है। भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में वाणी का तप बता रहे। देखे वाणी के स्वरूप, वाणी का जो तप है उनके स्वरूप को देखे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। ये वाणी से तपा जाने वाला जो तप है उनका स्वरूप भगवान ने इसमें बताया। देखिए क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को, के अर्जुन अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा वाक्य का उच्चारण, हम वाणी से ऐसा बोले जिसको सुनकर के किसी के मन में उद्वेग न होवे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यदि बोले तो समझ लिए कि ये वो वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम उद्वेगम भयम, भगवान भाष्यकार कहते हैं उद्वेग का अर्थ है भय, यानी कि हम ऐसा ना बोले जिसको सुनकर के सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो, बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम ऐसा ही वाक्य बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति डर न जाए, हमसे डर न जाए ऐसा वाक्य बोले कि सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति विश्वास नहीं है, तो हम ऐसा बोले ताकि हमारे प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाए। तो इस वाक्य को कहते अनुद्वेग कर्म वाक्यम। फिर आगे कहा सत्यम प्रिय हितम चयत। इतना ही नहीं, वो वाक्य भय उत्पन्न करने वाला हो इतना ही नहीं, भय उत्पन्न करने वाला न हो इतना ही नहीं, किंतु वो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। ऐसा वाक्य का उच्चारण हम करें, सुनने वाले के मन में भय न हो, उद्वेग न हो, और वो वाक्य सत्य भी हो, प्रिय लगने वाला भी हो और हितकारी भी हो। देखिए, इससे ये यहां प्रतीत होता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो पहले कितना ख्याल रख करके बोलना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। ये नहीं कि मुखम अस्ति इति वक्तव्य, मुख दिया है भगवान ने तो कुछ न कुछ बोलते रहे, ऐसा नहीं। बोलते समय बहुत ध्यान रखे कि हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को उद्वेग तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप कहेंगे कि उद्वेग नहीं कर रहा है, कपटी व्यक्ति भी बढ़िया से बढ़िया बोलता है, बोलता है कि नहीं? सामने वाले की पीठ में यदि खंजर भोंकना है तो वो पहले बड़ी तैयारी करके आता है और ऐसे वाक्य बोल करके उसके मन में विश्वास उत्पन्न कर देता है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य तो वो भी हो सकता है, इसलिए वो यहां ग्रहण न हो जाए, वो तब के लिस्ट में उनका नाम न आ जाए, इसलिए भगवान ने आगे और भी तीन विशेषण दिए। नहीं तो जैसे कहते हैं कोई मीठे वचन बोलते हैं, चिकने चुपड़े चाशनी में डूबोए हुए, जैसे कहते हैं चाशनी में डूबे हुए वाक्य बोलते हैं, व्यक्ति चक्कर में आ जाता है, वो भी तो अनुद्वेग कर्म वाक्य है, किंतु वो सत्य नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि वो वाक्य कैसा होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। सत्य ही हो इतना ही नहीं, प्रिय भी हो, प्रिय भी हो इतना ही नहीं, वो हितकारी भी हो। ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, एक एक भी नहीं। आचार्य शंकरानंद जी यहां पर कहते हैं कि ये तीनों एक साथ में होने चाहिए, इसमें एक भी हो, जैसे सत्य हो, वाक्य सत्य हो किंतु प्रिय ना हो तो वो नहीं बोलना चाहिए। यदि सत्य भी हो, प्रिय भी हो किंतु हितकारी ना हो तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य, प्रिय और हितकारी तीनों गुण उसमें होने चाहिए, और चौथा जैसे कहा उद्वेगकारी ना हो। मनुस्मृति आप लोग पढ़े होंगे, मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं सत्यम ब्रियात, सत्यम ब्रुयात, प्रियम ब्रुयात, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च नान्द्रितम ब्रुयात, एष धर्म सनातन। कहते हैं कि सत्यम ब्रुयात, पहले तो कहा कि बोले तो सत्य बोले, इतना ही नहीं साथ साथ में प्रियम च, प्रिय भी बोले। फिर कहा कि न ब्रुयात सत्यम, सत्य बोले पर ऐसा ना बोले कि जो अप्रिय लगने वाला हो। कई लोग कहते हैं ना, मेरे को तो सत बोलने की आदत है, मैं तो सबको सच सच बता देता हूं, मैं किसी की शय शर्म नहीं रखता हूं, हर किसी को वे जो है जो सच्चा है तो बता ही देता हूं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जब उनको कोई वो सत्य बोल देता है तो क्या हो जाता है, ગુજરાતીમાં બોલતે મેં તો બધાને સાચું બોલી જાઉં છું, કહીશ હું તો બધાને સાચું કહી દઉં છું, પણ તને કોઈ સાચું કહેશે ત્યારે તબ ક્યા હોગા, તબ પતા ચલેગા કે સત્ય કા ક્યા સ્વરૂપ હૈ, વો પ્રિય હૈ યા અપ્રિય હૈ. ઇસલિયે મનુજી કહેતે હૈ સત્ય હો લેકિન અપ્રિય નહીં હોના ચાહિયે. કઈ વાક્ય એસે હોતે હૈ વો સત્ય હોતે હુએ ભી અપ્રિય હો તો કહેતે હૈ ન બ્રુયાત સત્યમ અપ્રિયમ. ઠીક હૈ, સત્યમ ચ નાંદ્રિતમ બ્રુયાદ એષ ધર્મ સનાતન, ઓર ઝૂઠ નહીં હોના ચાહિયે, સત્ય હી હોના ચાહિયે, તો કહેતે હૈ યે સનાતન ધર્મ હૈ. ઇસલિયે ભગવાન ભી ઇસી બાત કો ધ્યાન મેં રખતે હુએ યહાં કહેતે હૈ. દેખે આપ લોગ એક બાત કો ધ્યાન મેં રખે કે હમારે યહાં શ્રુતિ શાસ્ત્ર કી સંખ્યા કા કોઈ પાર નહીં, કિતને ઉપનિષદ હૈ હમારે યહાં, સ્મૃતિ જો હૈ સ્મૃતિ શાસ્ત્ર કી સંખ્યા કા કભી કોઈ પાર નહીં હૈ, કઈ એક સ્મૃતિયા હૈ હમારે યહાં, ઓર સૂત્ર ગ્રંથ ભી ઇતને ઉનકી ભરમાર હૈ, કિંતુ સબકા જો તાત્પર્ય હૈ વો હૈ એક હી હૈ. યદિ આપ વિચાર કરેંગે તો સબ જગહ એક મેં હી મેલ હોગા ઉનકા. અબ મનુસ્મૃતિ મેં જો કહા હૈ વો યહાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતા મેં ભી કહેતે હૈ, કિંતુ ભિન્ન ભિન્ન સમય મેં ભિન્ન ભિન્ન ઋષિ કે દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન માહોલ મેં લિખી ગઈ બાતે હોતી હૈ તો કથન મેં ભેદ જરૂર હોતા, કિંતુ જો કથ્ય હૈ વો એક હી હોતા હૈ. ઇસલિયે ભગવાન કહેતે હૈ સત્યમ પ્રિય હિતમ ચયત, સત્ય ભી હો પ્રિય ભી હો ઓર હિતકારી ભી હો. આચાર્ય શંકરાનંદજી તો યહાં કહેતે હૈ કે જૈસે વેદ પાઠ કરતે હૈ, વેદ પાઠ કરતે હૈ તો વો વેદ પાઠ જૈસે ઉદાત અનુદાત ઓર સ્વરિત, એ તીનો સ્વર સે યુક્ત હોના ચાહિયે. કેવલ ઉદાત્ત સે હો ઇતના હી નહીં, અનુદાત ઓર સ્વરિત એ તીનો સે યુક્ત હોના ચાહિયે. વૈસે હી યહાં પર ઉન્હોને કહા કે વાક્ય અનુદ્વેગ કર હો ઇતના હી નહીં, યે સત્યમ પ્રિય ઓર હિતકારી એ તીનો ગુણો સે સંમિલિત વાક્ય હોના ચાહિયે. કેવલ સત્ય ભી નહીં, કેવલ પ્રિય ભી નહીં, ઓર કેવલ હિતકારી ભી નહીં, તીનો ગુણ હોને ચાહિયે. તો એસા જો વાક્ય હૈ ઉસ વાક્ય કા ઉચ્ચારણ યદિ હમ કરે તો માન લીજીએ કે હમ વાણી કા તપ કર રહે હૈ. અભી આગે આ રહે માનસ તપ મેં વાણી કા તપ, યે નહીં કે બોલના બંધ કર દે. લોગ યહી સમજતે કે બોલના હી બંધ કર દો, બોલના બંધ કરના વો તપ નહીં હૈ. ભગવાન ને હમકો વાંગ દીએ તો ચુપ રહેને કે લીએ નહીં હૈ, ચુપ રહેના કિંતુ અસત્ય કે રૂપ મેં, કે હમ ન બોલે યહી જો હૈ ચુપ્પી હૈ. ચુપ્પી કા અર્થ યે નહીં કે જો હૈ જહાં બોલની યોગ્ય હો વહાં ભી ન બોલે તો જો. એક તો દેખીએ કોઈ વ્યક્તિ જો હૈ અંટ બંટ સંટ બોલ દેતા હૈ તો ઉસસે ભી નુકસાન હોતા હૈ, એ તો આપ દેખતે હી હૈ, ઓર ઉસસે ભી જ્યાદા કઈ ગુના નુકસાન નહીં બોલને સે હોતા. લેકિન એ લોગો કે ધ્યાન મેં નહીં આતા કે દેખો ઇન્હોને નહીં બોલને સે જો નુકસાન કિયા વો લોગો કે નજર મેં નહીં આતા હૈ, લેકિન વો નુકસાન જો હૈ વો બહોત જ્યાદા ઉઠાના પડતા હૈ. ઇસસે અચ્છા હૈ કે જો બોલ દેતા હૈ તો ઉસસે નુકસાન તો થોડા હોતા હૈ ઓર ઉનકા સમાધાન ભી હો જાતા હૈ, કિંતુ યથાર્થ બાત નહીં બોલના ચુપ રહેના ઉસસે જો નુકસાન હોતા હૈ વો ઇતના લંબા ચોડા નુકસાન હોતા હૈ કે ઉસકા સમાધાન ઢૂંઢના ભી मुश्किल हो जाता है, प्राय ऐसा देखने में आता है। तो देखिए, ये नहीं बोलने का स्वरूप और बोलने का स्वरूप, ये दोनों भगवान यहां बता रहे। इसलिए कैसा बोलना, तो कहा अनुद्वेगकारक वाक्य हो, प्रिय हो, सत्य हो और हितकारी हो, तो ऐसा यदि हम बोलने में समर्थ हो गए अभ्यास के बल से, तो समझ लीजिए कि हम वाणी का तप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए और वाणी का तप का वो क्या है, स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, ये भी जोड़ दीजिए, स्वाध्याय अभ्यसनम। देखे, स्वाध्याय करना ये भी वाणी का तप है। आप लोग कर रहे हैं नहीं स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तो है। रोज सुबह में फटाफट तैयार होकर के 7:30 को ध्यान में रखते हुए, जैसे लोग भागा भागी ट्रेन में करते हैं, वैसे ही हम भागा भागी करते हुए यहां पहुंचते हैं। तो आप ये मत समझे कि हम फालतू कोई समय बिगाड़ रहे, ऐसा नहीं है। ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो वांग्मयम तप का है। भगवान ने, आप लोग गीता में पढ़ियो, स्वाध्याय करना, और इससे भी और बढ़िया स्वाध्याय शब्दतः अध्ययन करना, जैसे इनके बाद तुरंत होता है 8:30 के बाद, 9:30 और 9:30 के बीच में जो होता है वो इससे भी अग्रिम कोटि का स्वाध्याय। ये भी स्वाध्याय तो है ही, किंतु उससे जैसे हम लोग 100 रुपये को भी पैसे ही कहेंगे कि मेरे पास पैसे है, ठीक है कि नहीं, 1000 रुपये हो तब भी कैसे पैसे ही है मेरे पास, किंतु 100 में और 1000 में फर्क है कि नहीं, ठीक वैसे ही समझ लीजिए। ये भी स्वाध्याय ही है, किंतु समझ लीजिए वो 100 रुपया और 1000 रुपये कोटि का जो है, ये तो दृष्टांत है, इसको पकड़ के मत रखियो कि 100 रुपया और 1000 रुपया, ये भेद दिखाने के लिए बता रहा हूं मैं। और इससे भी और आगे बढ़े हम तो इसके बाद जो होता है वो स्वाध्याय का वस्तु सत्स्वरूप है, कि हम ग्रंथ का शब्द का अध्ययन करें वो है स्वाध्याय। और ये स्वाध्याय को करना सज्जनों वो वाणी का तप है। भगवान गीता में यहां पर कहते हैं, देखो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का जो अभ्यास, स्वाध्याय का अर्थ है यहां पर वेद, स्वाध्यायस्य अभ्यसनम, यहां पर ऐसा अर्थ है स्वाध्याय का अभ्यास। तो अब स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय का अर्थ हमारे वहां आचार्यों ने कहा वेद। अब अभ्यसनम जोड़ दीजिए तो अब वेद अभ्यसनम हुआ। अब अभ्यसनम वो वर्तमान कोटि में कंटिन्यू प्रक्रिया का अर्थ है। अब आपको उसको स्थिर रूप में बोलना है तो कह सकते हैं वेदाभ्यास। अब बताइए भला वेद क्या है, पता है वेद किसको कहते हैं? तो हम लोग वेद के नाम तो जरूर जानते किंतु वेद के स्वरूप को आज हालत यह है कि हम नहीं जानते। हम अपने को वैदिक सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो वेद मूलक है, और 4 वेद है इतना ही जानते हैं। और विडंबना ये होती जा रही है कि हमारे बच्चे को आजकल पूछा जाए वेद क्या है तो कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे कि वेद क्या है, तो हम लोग उनको ये बता नहीं पाते हैं कि वेद क्या है, क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं है। देखिए वेद क्या है, धर्म ब्रह्म प्रमाण वाक्यम वेद, धर्म में और ब्रह्म में जो प्रमाण वाक्य है उनको कहते हैं वेद। ये वेद का वैसे तो कई प्रकार से स्वरूप बताया गया है, किंतु ये है वेदत्व जो धर्म और ब्रह्म को बता देवे। क्यों? धर्म और ब्रह्म अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है? नहीं है। धर्म के स्वरूप को या साथ साथ में अधर्म भी ले सकते हैं। ये हम क्या धर्म है क्या अधर्म है वो हम तर्क के द्वारा कभी उनको सिद्ध नहीं कर सकते। हम बाहर से प्रमाण के विचार किए बिना, वैदिक प्रमाण का विचार किए बिना किसी चीज को धर्म या अधर्म नहीं ठहरा सकते हैं। हम अपने आप किसी चीज में ये नहीं कह सकते हैं कि ये धर्म है या अधर्म है। ये कोई मनुष्य बुद्धि का फल नहीं है। आजकल के समय में हर चीज को तर्क के द्वारा परखा जाता है और उससे आगे कहते हैं विज्ञान के द्वारा इनको परखी जानी चाहिए, किंतु कुछ चीज ऐसी भी है जहां पर विज्ञान की भी पहुंच नहीं है। आजकल के बुद्धिजीवी वर्ग हर चीज में ये सोचता रहता है कि ईश्वर के बारे में भी कहते हैं वो बुद्धि का विषय है। तो आजकल आप अखबार में देखते हैं कि न जाने कैसे कैसे बातें आती है। आजकल एक लेखक की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, वो नाम पूरा याद नहीं से कुछ द लीजेंड का ऐसा कुछ नाम है, और उसका लेखक भी कोई है स्टीफन हॉकिंग ऐसा नाम है। तो वो उनकी बड़ी चर्चा आ रही है आजकल। वो कहते हैं कि मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये पाया, मैंने जाने ये कोई भौतिक शास्त्र का वो अध्यापक है कोई वैदेशिक यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है मैंने इतने सालों के अभ्यास से ये निर्णय पर पहुंचा और ये पाया कि इस संसार के उत्पत्ति में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। कहते हैं ये जो संसार चल रहा है वो कहते हैं कुछ भौतिक शास्त्र के नियम के अनुसार चल रहा। उनको पता, उनको ये पूछा जाए कि ईश्वर से नहीं चल रहा, भौतिक शास्त्र के नियम से ही तुम बताओ, तो फिर ये भौतिक शास्त्र के नियम क्या है जो जिससे संसार तुम कहते हो चलता है? ये क्या बला है? भौतिक शास्त्र के जो नियम है वो क्या बला है? वो कहां से आए? वो कहां से उत्पन्न हुए? किससे उत्पन्न हुए? वो किसने बनाए वो नियम? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि बस भौतिक शास्त्र के नियम स्वभाव से, कई लोग कहते हैं स्वभाव से चलता है। अब ये स्वभाव क्या है जो जो ये सारे संसार को चला रहा है, इतना समर्थ और शक्तिशाली है जो स्वभाव, वो क्या है? इसका तो भी तो विचार करना पड़ेगा कि ये जो स्वभाव चला रहा है या कौन चला रहा है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके चक्कर में आकर के वो भी अखबार में न जाने ऐसी बातें लिखते हैं कि देखो अब ये संदर्भ, ये अब सोचने की समझने की बात आ गई कि ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा विचार कह रहे हमारे भारतवर्ष में और हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने किया।